அரிஹந்தாணம் சரணமுத்துஜாணம் நமோ ஆயிரே ஆணம் சரணமோ வஜ்யாணம் சரணமோ லோயே மோக்ஷ மார்க்ஸ்ய நேதாரம் வேதாரம் கர்ம பூவ்ரதாம் வ்யாசாரம் விஷ்ணு சத்வானாம் வந்தே சதுகுண லோகே வந்தே சதுகுண லோகே வந்தே சதுகுண லோகே. यहाँ जैन सेंटर में सत्वार सूत्र के छठे अध्याय को आधार बनाकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ कर्मों के आश्रव के कारणों की चर्चा है। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है, आखिर कर्म आते क्यों हैं, आखिर कर्म बंधते क्यों हैं, आखिर हमें ये तकलीफ देता कौन है, इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जानने योग्य हैं। जैन दर्शन का ये कर्म सिद्धांत बड़ा ही अपूर्व है, अद्भुत है। और जैन दर्शन की विशेषताओं में एक अद्भुत विशेषता भी है कर्म सिद्धांत। जैन दर्शन और दूसरे दर्शनों में यदि हम कहीं अंतर की चर्चा करें तो एक बहुत बड़ा अंतर है। सभी धर्म दर्शन जैन दर्शन को छोड़कर, विशेषकर इंडियन फिलोसॉफी की बात करता हूँ, वो सब ये मानते हैं कि कोई एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो कर्ता धर्ता है। देखिए, कुछ स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा है,
क्या लिखा है? विचार किया,
कभी विचार किया क्या? क्या विचार किया? आज तक अनादि काल से विचार ही तो नहीं किया, बाकी तो सब किया है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, हम तो बहुत विचार करते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, हम तो खूब विचार करते हैं, हमने बहुत विचार किया, दिन भर विचार ही तो करते रहते हैं कि क्या कि डॉलर कैसे बढ़े, दिन भर हमारे विचार ही तो चलता रहता है कि बिजनेस कैसे बढ़े, दिन भर हम ये विचार ही तो करते रहते हैं कि तबीयत कैसे ठीक रहे, घर में शांति कैसे रहे, विचार तो करते हैं हम। आप कैसे कह रहे हो कि विचार नहीं करते? कि नहीं नहीं, मैं किसी और बात के बारे में कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये विचार किया क्या शक्ल और अकल का अंतर क्यों है, ये विचार किया क्या आपने? कितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोगों की दो आंखें हैं, किसी के तीन हो तो बताना भैया, तीन तो नहीं है किसी के, किसी के एक हो तो बता दो, ना किसी के एक है ना किसी के तीन है, सबकी दो आंखें हैं और दो में से किसी की आंख आगे हो एक और एक पीछे हो तो बता दो, ऐसा भी तो नहीं है, दोनों ही फ्रंट में है, दोनों ही फेस पर हैं और दोनों आंखों के बीच में नाक भी है सबके और मुंह भी है और दो कान भी है, सर और सर पे बाल भी है, किसी के कम और किसी के ज्यादा, आखिर ऐसा क्यों, सबकी शक्ल एक जैसी क्यों नहीं है, कभी विचार किया क्या आपने? शक्ल तो एक जैसी है ही नहीं, अकल भी एक जैसी नहीं है, बुद्धि भी सबकी अलग अलग है, आखिर क्यों, किसके पीछे कारण क्या है, हमने विचार नहीं किया कभी भी, सर ये चक्कर क्या है, ऐसा क्या अंत? यहाँ तक कि आप महसूस करेंगे जो लोग जुड़वा होते हैं, जो लोग हम शक्ल होते हैं, जिन दोनों व्यक्तियों का चेहरा एक जैसा होता है उनमें भी अंतर होता है, उनमें भी पहचानने वाले पहचान लेते हैं, वो भी दोनों भाई यदि फोटो हो कहीं तो पहचान लेंगे कि ये मेरी फोटो है और ये भाई की फोटो है, बोलो खुद भी पहचानते हैं और परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं बारीक अंतर को देख के पहचानते हैं, लेकिन ये अंतर है क्यों? इतना ही नहीं और विचार करो, बिजनेस में लाभ हानि, सबका बिजनेस एक जैसा नहीं है, सबका परिवार एक जैसा नहीं है, बिजनेस और परिवार में उथल पुथल का कारण क्या है? सोचो जरा, ऐसा क्यों? बहुत लोग बात करते हैं मेरे पास ही ऐसा क्यों आखिर, ऐसी चर्चाएं बहुत होती है, बहुत होती है, मेरे साथ ही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है, मैं इतना करता हूँ इतना करता हूँ, फिर सब मुझे ही क्यों सुनाते हैं? मैं तो कर करके मरे जा रहा हूँ और यकीन नहीं है बिल्कुल भी, सब उसी उसको पूछते हैं, सब उसकी ही सुनते हैं, मेरी क्यों नहीं सुनते हैं? देखो भाई, इतना ही नहीं, क्या सोचा था आपने और आज क्या हो गए? फर्स्ट लाइफ के बारे में सोचो। महेंद्र भाई, आपने सोचा था कि मैं अमेरिका के बस जाऊंगा जब आप 20 साल के थे? नहीं सोचा था आपने, फिर क्यों आ गए आप यहाँ? क्यों डॉक्टर साहब, आपने सोचा था बचपन से कि मैं इसी लाइन में जाऊंगा? शरीफ भाई, लगता है आपको हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में, जिस जॉब में हैं, जिस जगह पर हम हैं, हमने क्या सोचा था? निश्चित तौर पर ये तो नहीं सोचा था जैसा आज है। फिर आखिर किसने किया ये सब, कौन कर रहा है? सुगुण भाई, विचार करने के लिए कह रहा हूँ मैं, प्रश्न एक छोड़ा है मैंने आपके सामने, कभी विचार किया क्या? विचार तो करना पड़ेगा, फिर आप क्या जरूरत है विचार करने की? या तो आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, या तो आप सुखी हैं, या तो आप स्वयं परमात्मा बन गए हैं, या तो आपको अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, या तो आपकी सर्व इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी है, अब कोई इच्छाएं बाकी नहीं बची है, तब तो ये कह दिया जाए कि ठीक है, जो हम खुश है, बात खत्म हो गई। यदि आप ये कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, तो फिर मेरे बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे, फिर उनका आप जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए अच्छा है कि उन प्रश्नों को नहीं उठाऊं तो ठीक है। कोई व्यक्ति दुनिया में सुखी नहीं है, आप कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, मुझे तो आप सुखी नजर नहीं आते, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं सभा में, मुझे मालूम है 90% दुखी है परेशानी है, लेकिन कुछ हो सकते हैं ना ऐसे, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, गिरीश भाई को तकलीफ है कि नहीं आपको? है संजीव भाई, है कोई तकलीफ? अर्पित, कोई तकलीफ? क्या तकलीफ है? ऐसे तो कुछ है नहीं कोई बीमारी वगैरह तो? किसी तरह की कोई रोग, कोई बीमारी? क्यों भैया, है कुछ? इस उम्र में भी अभी ज्यादा उम्र नहीं है, 50 से हूँ। और किसी से कोई बीमारी? अच्छा, सुबह से कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दवाई नहीं खाई हो? आपने नहीं खाई, आपने भी नहीं खाई, आपने भी नहीं खाई, आपने भी नहीं खाई, हो वाओ, क्या बात है, बाकी सब लोगों ने दवाई खाई है। अच्छा, आपने दवाई नहीं खाई, खाना खाया था? खाना तो खाया था, खाना खाना शुगर रोग की ही दवाई है भोजन क्यों किया था मैं पूछता हूँ आपसे, बोलो, भोजन किया था ना, क्यों किया था, वाय? तुम्हें भूख लगी, भूख लगी, उसका इलाज क्या किया आपने? भूख लगी थी तो खाना खाया, पानी पिया था? हमें लगता ही नहीं है कि ये कुछ बीमारी है, हमें लगता ही नहीं है कि जन्म मरण कुछ बीमारी है, हमें लगता ही नहीं है कि मिथ्यात्व एक बहुत बड़ा कैंसर है, हमें लगता नहीं है कि हम बीमार हैं, ये लगता नहीं है, ये पागलपन बहुत बड़ी बीमारी है। ये पागलपन ही तो है और क्या है, होश नहीं है। खैर, मेरा तो प्रश्न यह है कि यदि बीमार है और यदि ये तकलीफ है तो ये सब कौन करता है? प्रश्न नया, आप तो नहीं चाहते थे, हम तो नहीं चाहते थे, फिर क्यों हुआ? بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں، ہم ہی کرتے ہیں یا کوئی اور؟ ذمہ دار کون؟ ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کا. بھگوان کو دوش دیں کسی اور کو؟ لیکن بھگوان کو تو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو ہاتھ سے ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں. بھگوان تو نہیں، مجھے معلوم ہے اس سوادھیائی سبھا میں کچھ نئے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب نشچت طور پر ایک ہی جواب دیں گے، پرماتما تو نہیں کرتے ہیں صاحب، یہ تو ہم برابر جانتے ہیں. سچ میں آپ جانتے ہیں پرماتما نہیں کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو دیکھا تھا بھگوان کے سامنے بہت گمبھیر سا سے تھوڑا جھکتے ہوئے گھبراتے ہوئے، میں پہچان گیا ضرور کچھ نہ کچھ فریاد لے کے آئے ہو. ہم پوچھیں گے تو یہی کہوں گے کہ بھگوان کچھ نہیں دیتے، بھگوان کچھ نہیں کرتے، کیونکہ ہم ہمارے سامنے اور کیا جواب دوں گے آپ. لیکن مجھے معلوم ہے ڈاکٹر صاحب جب تکلیف ہوتی ہے نا کیا تو بھگوان یاد آتے آتے کیوں یاد آتے ہیں؟ بھگوان تو بھلا کرتے ہی نہیں ہے، کیوں یاد آتے ہیں؟ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، پریشانی کے کال میں سب کی کہہ رہا ہوں سب کی، مگر بھائی بھگوان کو اکرتا مانتے ہو آپ؟ میں جانتا ہوں آپ اکرتا پن کی چرچا کرتے ہو، مہندر بھائی اکرتا پن کی بات کرتے ہیں ہم، مجھے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود میں سب کو شامل کر رہا ہوں. سب لوگ ہم لوگوں میں سے جب بھی بھگوان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کچھ نہیں مانگتے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن جب کوئی سنکٹ ہوتا ہے نا سب درشن کرتے سمے کچھ نہ کچھ تو ہے بھگوان پریشانی کون ہے. جیسے میں جانتا ہوں آپ کچھ کرو گے نہیں، یہ بات ساتھ میں چلتی ہے، کیونکہ وہ اتنا بار بار میں سنا ہے نا، یہ بات تو ساتھ میں چلتی ہے کہ بھگوان آپ کچھ کرو گے نہیں، لیکن پھر بھی کیا کروں پریشان بہت ہوں، کچھ کیا ہوگا؟ ہوتا ہے ایسا، بھگوان تو نہیں کرتے ہیں. اس پوائنٹ کے اوپر زیادہ چرچا نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت چرچا کی جا چکی ہے، کی جا سکتی ہے. ابھی پچھلے دنوں اس پوائنٹ پر چرچا میں نے نیو جرسی میں بھی کی ہے، دو تین پروچن اس کے یوٹیوب پر آ گئے ہیں، تو بہت باتیں ہو سکتی ہے، آپ لوگ بھی سب جانتے ہیں. تو پھر کیا کارن ہے جو باتیں پیچھے پوچھی تھی ان کا؟ کہ ایک ہی جواب ہے بھائی صاحب، سب کے اپنے اپنے کرن. طور پر آپ لوگ یہی بات کہیں گے، اس میں کیا ہے؟ سب کے اپنے اپنے کرم ہیں. آپ جانتے ہیں یہ کرم کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ کرم سدھانت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ کرم کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ ان کرموں کی کام کرنے کی پروسیس کیا ہے؟ پرکریا کیا ہے؟ کرم کتنے پرکار کے ہوتے ہیں؟ یہ ستوار پتر کا چھٹا ادھیائے جسے ہم نے یہاں بھید بنایا ہے، ابھی پانچویں کی چرچا کر چکے ہیں کل تک آپ کے بیچ میں، پرسوں تک، کل تو چھٹا شروع کر دیا تھا ہم نے. یہ کیا چرچا ہے؟ آخر یہ کرم کتنے پرکار کے ہیں اور یہ کرم کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ تو سنو، جو اپنے اپنے کرم ہیں نا، یہ کرم تین پرکار کے ہیں. نمبر فرسٹ نام کیا ہے؟ دربیہ کرم. آپ جانتے تھے کرم تین پرکار کے ہیں؟ ہاں. دوسرا دربیہ کرم، بھاو کرم اور نو کرم. ان میں سے کیا دکھتا ہے آپ کو؟ کیا کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کرم ہے؟ ہیل ہوتا ہے کچھ؟ صرف نو کرم دکھتا ہے، صرف نو کرم دکھتا ہے. دربیہ کرم دکھتے ہیں کیا کسی کو؟ دکھتے تو نہیں ہے، وشواس ہے کیا؟ وشواس تو ہے. اور بھاو کرم نہیں دکھتے آپ کو؟ بھاو کرم نہیں دکھتے. دیکھو میں نے ایک واقعہ ارشاد کیا، دربیہ کرم دکھتے نہیں ہیں، نو کرم دکھتے ہیں اور بھاو کرم محسوس کیے جاتے ہیں. مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ میں ہنس رہا ہوں، من بہت پرسن ہے کہ کون یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھاو کرمی ہے نا، من بہت پرسن ہے. راگ کا پرنام، ویگ کا پرنام، کشائی کا پرنام، لڑنے جھگڑنے کا پرنام، پیار سے رہنے کا پرنام، یہ جو بھی بھاو ہیں یہ سب محسوس کیے جاتے ہیں. تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھا ان تینوں کو، دربیہ کرم، بھاو کرم اور نو کرم، اس گنت کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھ لو. یہ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹینٹ ٹاپک ہے یہ تینوں. द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से नौ कर्म, द्रव्य भाव नौ कर्म का ये सर्कल चलता रहता है। इनमें सबसे पहला नंबर द्रव्य कर्म का। द्रव्य तो समझते हैं ऐसा, द्रव्य तो समझते हैं आप, आज ही दिखे पिछले साल के बाद वीकेंड में आए नहीं, आज वर्किंग डे में आपके दर्शन हुए, ये आपकी रुचि को दिखाता है। कुछ विशेष परिस्थिति के कारण नहीं आ पाए होंगे, कोई बात तो नहीं। ये द्रव्य कर्म, द्रव्य क्या है? द्रव्य तो सब समझते हैं, यहाँ सब समझते हैं ना, अभी पांचवें अध्याय में विस्तार से पढ़ाया था। द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल से द्रव्य, द्रव्य तो समझते हैं हम। और कर्म क्या है? कर्म माने काम, कर्म नहीं समझते हम। छह द्रव्य जो भी काम करते हैं वो द्रव्य कर्म होगा, क्यों? ये द्रव्य कर्म नहीं है, वो द्रव्य अलग थे जो पांचवें अध्याय में समझाए थे। ये द्रव्य कर्म अलग है जिसकी चर्चा छठे अध्याय में की जा रही है। ये द्रव्य कर्म क्या है तो देखिए, जीव के भावों का निमित्त पाकर आत्मा के साथ बंधने वाले धूल के समान कण। क्या क्या है बेसिकली, है क्या चीज? ये जो तो द्रव्य कर्म है, ये रॉ मेटेरियल क्या चीज है? ये चीज का है, सोचो जरा द्रव्य कर्म के बारे में। दिखते तो है ना, अदृश्य है, अमूर्तिक है, धूल की तरह होते हैं, लेकिन ये जैसे धूल किसी के ऊपर डाल दो ना, दिखती मतलब बहुत बारीक हो, कण हो तो वो दिखे नहीं, लेकिन ये आत्मा के साथ आकर के चिपक जाते हैं, आत्मा के साथ आकर के बंध जाते हैं। बंधते क्यों है? बंधते कैसे हैं? ऐसा भावों का निमित्त पाकर, जीव के भाव जैसे भाव करेंगे उसका निमित्त पाकर के ये आकर के बंध जाएंगे। ये कर्म है, ये द्रव्य कर्म है, मिट्टी होती है बस, ये और कोई पावर वावर नहीं है इसमें, कर्म में कोई पावर नहीं है, एक्चुअल में तो ये धूल ही है। कोई ऐसी यदि कोई मशीन बने जिससे आत्मा को पकड़ा जा सके या कर्म को देखा जा सके, तो आप वहां जाकर के कपड़ा लगाओ ना, पोंछा लगाओ तो साफ हो सकता है? टेस्टिंग की जाएगी वहां तो साफ हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे पकड़ में आएगी? बड़ा मुश्किल काम है। अदृश्य है, अमूर्तिक है, धूल जैसे कण है, बंध रहे, बांधते हैं। आप यही कर रहे हैं कि आप बंध रहे हैं वर्तमान में? आपके वर्तमान में कुछ न कुछ भाव चल रहे हैं, भाव तो चल रहे हैं, लेकिन फील हो रहा है कि कोई बांध रहा है? रमेश भाई, किसी ने बांधा आपको अभी? अभी पिछले 15 मिनट में, 18 मिनट में आपने जो कुछ भी यहाँ भाव विचार हुए हैं, आपने ऐसा फील किया था कि किसी ने आकर के आपको सांकड़ों से बांध दिया हो कि नहीं? रस्सियों से बंधन तो बंधन दिखाई देता है, ये कर्म का बंधन हमारे को बंधन नहीं लगता है। समस्या ये है कि यदि आपको रस्सियों से बांध दिया जाए तो आप छूटना चाहते हो, खुलना चाहते हो,
तो फील होता है,
वो फील होता है हमारे को। कुछ नियमों में बांध दिया जाए तो आपको बंधन दिखता है, नियमों का बंधन दिखता है हमारे को। अरे यार बंध गया यार, हमारे तो घर के रूल्स रेगुलेशन इतने ज्यादा, हमारे तो पिताजी इतने स्ट्रिक्ट है ना, कुछ कर ही नहीं सकते हम, बहुत बंधन महसूस करता हूँ। अब पिताजी नहीं रहे, अब जाकर के थोड़ा सी शांति मिली, लोग है, पब्लिक है, इसमें क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। शांति अगर कुछ काम करने ही नहीं देते थे, जो करो उसके अंदर, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं खा सकते, घर में आलू नहीं बनेगा, प्याज नहीं आएगा, ये नहीं होगा, इतने रेस्ट्रिक्शन से हमारे यहाँ बहुत बंधन लगता है इसमें, वहां बंधन दिखाई देता है। किसी के टोकने रोकने में बंधन दिखाई देता है, लेकिन ये कर्म का बंधन बंधन नहीं दिखाई देता है, उस बंधन से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि बंधन दिखता है उससे मुक्त होना चाहता है। यहाँ बंधन दिखता नहीं है तो ये मुक्त होना नहीं चाहता है, लेकिन भैया ये अदृश्य बंधन है, ये बंधन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बंधन और भी कुछ काम कर रहा है, कुछ और काम बतलाया। क्या करते हैं ये आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते, लेकिन बात निमित्त की अपेक्षा से है, ध्यान देना। उपादान की जब योग्यता होती है, जीव जब विभाव भाव रूप स्वयं परिणमन करे, तो उस समय कर्म का उदय भी होता है। ये नृत्य की अपेक्षा बात इसलिए जोड़ दी गई है क्योंकि कोई ऐसा न समझ ले कि कर्म मुझे हैरान कर रहा है, कोई ये न समझ ले कि कर्म की वजह से ये तकलीफ हो रही है, क्योंकि आज तक हम यही समझते रहे कि कर्म की वजह से ऐसा हुआ। एक नाम ज्ञानावरणी सबने सुना होगा, क्या ज्ञानावरणी कर्म की वजह से ज्ञान धरता है? क्या ज्ञानावरणी कर्म के उन पुद्गल के परमाणुओं में ऐसी ताकत है जो आत्मा को आवरण कर सके? समझना, थोड़ी मार्मिक बात कह रहा हूँ, सुनो। अंदर में आत्मा का जब केवल ज्ञान स्वरूप प्रकट होता है तो क्या कोई धूल, कोई कण, ये मिट्टी जैसे कण तो छोड़ो, वज्र की दीवार भी सामने आ जाए तो क्या केवल ज्ञान जानने से रुक सकता है? नहीं रुकता है। मतलब वज्र की दीवार भी आ जाए तो दूर की बात जान ले ले, और आप कह रहे हो कि थोड़ी सी धूल पड़ गई और नहीं जान पाया, ठीक है मैटर है, ठीक है चक्कर है। सच्चाई तो यह है कि जब ज्ञान और आत्मा स्वयं विभाव रूप परिणमन करता है, स्वयं मंद रूप परिणमन करता है, जब ज्ञान पर्याय की मंद रूप जानने की योग्यता होती है, उस समय नियम से बाहर में ज्ञानावरणी कर्म के उदय का निमित्त होता है। कर्म पुद्गल परमाणुओं का परिणमन कर्म में और ज्ञान का परिणमन ज्ञान में, और दोनों का समकाल जिसे काल प्रत्याशक्ति कहते हैं शास्त्रों की भाषा में, उसे देखकर ये कहा जाता है कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान मंद हुआ, ये कहने में आता है। निमित्त की अपेक्षा से इस प्रकार का कथन किया जाता है। खैर कुल मिलाकर के इतनी बात समझ लीजिए, द्रव्य कर्म क्या है, ये बात कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? क्या चीज है द्रव्य कर्म? भावों और स्वभाव में बहुत फर्क है। नहीं, भाव मतलब गुण नहीं है। यहाँ भाव शब्द का प्रयोग विचार के अर्थ में है, परिणाम के अर्थ में है। शुभ अशुभ भाव जो चलते हैं ना, उन भावों की चर्चा है। वो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो भाव शब्द है वो गुण के अर्थ में है, ठीक है ना? वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो हम अपने भावों की बात, अभी देखो भाव की बात करता हूँ, समझाता हूँ। भाव समझना है, भाव को समझो, भाव कर्म क्या चीज है देखो आप, क्या लिखा है भाव कर्म? हाँ, भाव कर्म लिखा है ना, ये भाव कर्म क्या होते हैं देखो लिखा है। जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों को भाव कर्म कहते हैं। सब तरह के भाव आ जाएंगे इसमें, गुस्से का भाव हो, चाहे घमंड का भाव हो, चाहे मायाचारी का भाव हो, चाहे लोभ लालच का भाव, सब इकट्ठा कर लूं मैं, ये जो भाव आ रहा है ना, और ये जो दूसरा छोटा दिखाई दे रहा है हमारे को, मैं तो बहुत बड़ा हूँ और दूसरा कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ये घमंड, ये कुछ नहीं है मेरे सामने, क्या बात कर रहे हैं। कोई बड़े डॉक्टर हो ना यहाँ बैठे हुए हो, और किसी छोटे से डॉक्टर की प्रशंसा करते हुए कहते बहुत अच्छे डॉक्टर है, तो मन ही मन में सोचता रहता है इसकी तारीफ कर रहे हैं, मेरे सामने कुछ नहीं है, ऐसा विचार चलता है। एक एग्जांपल डॉक्टर का दिया है, किसी भी फील्ड में समझ लो आप, आज इस फील्ड में महेंद्र भाई और कोई व्यक्ति के बारे में तारीफ करते हैं, तो भाई साहब 2 साल से इनका कंप्यूटर का बिजनेस है, 2-3 साल से जबरदस्त बिजनेस है इनका, कहूंगी यार 2-3 साल से, जब ये पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से हम कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं। बोलो अंदर में क्या फीलिंग आती है? अभिमान का भाव, क्रोध गुस्से का भाव, मायाचारी का परिणाम, लोभ का परिणाम, और यहाँ तक कि हंसना और रोना, सभी तरह के भाव, क्या भिखारी भाव ही भाव है? बोलिए जी।
इसके लिए आपने यह लिखा है जीव के मोह राग द्वेष आदि भिखारी भाव का भाव के,
हाँ हाँ,
उनकी उनका उत्पन्न होना वही उनके कर्म से ही होता है ना।
हाँ, लेकिन वो भाव कर्म के उदय से नहीं होता है, कर्म का उदय इस जीव को भाव कराता नहीं है। हाँ बस वही निमित्त, निमित्त होता है। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इस पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं हम 1-2 दिन में, ये जबरदस्त पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आखिर हमारे हाथ में क्या है, वहां तक जाएंगे हम करें क्या? ये कर्म यदि तकलीफ देता है तो कल से एक काम करें अपन, ये तो भावों की बात हो गई, कल से हम एक काम कर सकते हैं कि यदि ये कर्म ही सब कुछ करने वाले हैं द्रव्य कर्म ही हमारे को सुखी दुखी करते हैं, द्रव्य कर्म ही यदि हमारी परिस्थितियों को बदलते हैं, सुधार बिगाड़ करते हैं, तो कल से एक काम हो सकता है, एक वेदी बनाओ महेंद्र भाई यहाँ मंदिर में, वेदी बनाओ मंदिर में, वेदी जैसे समझिए ना, तो उस वेदी पर आप कर्म देवता को विराजमान करो। ऐसा क्योंकि ये तो हाथ से हाथ धर के बैठे हैं, ये तो कुछ करते नहीं है और करने वाला है कर्म, तो उस कर्म देवता को हाथ जोड़ो, कर्म देवता के पांव पड़ो, उसको अर्घ चढ़ाओ, उसकी पूजन आरती भक्ति करो। हे कर्म माफ करना है यार हमारे को, हे कर्म क्यों कर रहा है, बोलो करेगा कि नहीं कर्म, सुनो वो कर्म कहेगा सॉरी सर मेरी कोई गलती नहीं है, ये क्या बात कर रहे हो, शास्त्र खोल करके दिखा दे, सबके अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, कर्म ही परेशान करते हैं, कर्म ही सुखी करते हैं, कर्म ही दुखी करते हैं, शास्त्रों की बातें खोल खोल करके बतलाता हूँ मैं, वो क्या कहेगा, हे मिस्टर जबरदस्ती इल्जाम मत लगाओ, तुमने इन्विटेशन लेटर भेजा था, तुमने इन्वाइट किया था, मेरा कोई कसूर नहीं है, तुमने बुलाया था, क्या कहेंगे, ये भाव किए थे तुमने, जैसे तुम भाव करोगे वैसे कर्म बंधेंगे, ये है भाव कर्म। क्या क्या लिखा अंतिम वाक्य, सभी तरह के शुभ अशुभ परिणाम, क्योंकि ऊपर वाक्य में लिख दिया था ना कि विकारी भाव, क्योंकि शुभ अशुभ दोनों ही विकार है, अविकारी भाव होते हैं, शुद्ध आत्मा में लीनता, उसे शुद्धोपयोग कहते हैं, वो निर्विकारी परिणाम है, वो भाव कर्म नहीं है, उससे बंधन नहीं होता, उससे निर्जरा होती है। हाँ सारे भाव शुभ भी और अशुभ भी भूल सकते हैं भाई, सारे शुभ अशुभ परिणामों को आपने विकारी कैसे कह दिया, कि सब विकारी है, भक्ति करने का भाव भी विकारी है, घबराना मत, कठोर कहता हूँ थोड़ी सी बात, पूजन करने का भाव भी विकारी भाव है, वो क्या कह रहे हो, कल तो आपने पूजन करवाई थी, विधान कराया था, शुद्धोपयोग करने के भाव भी विकारी है, क्योंकि जब तक भाव है तब तक विकार है, जब शुद्धोपयोग हो गया तो निर्विकार है, शुद्धोपयोग करने का जो भाव है वो भाव तो राग है, शुद्धोपयोग के ऊपर बात करो ना, परमात्मा बनने का परिणाम, भगवान बनने का भाव विकार है, जब तक ये भाव रहेगा तब तक भगवान नहीं बन पाएगा, सारे भाव शामिल हो गए इसमें, भक्ति पूजन व्रत उपवास संयम नियम कुछ भी, सब विकारी भाव है। अरे वे सारे भाव जिन भावों से बंधन होता हो, जो मुझे बांधने वाले हो, उसको भला कैसे कहूँ, समस्या तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये अटकाने वाले हैं, इनमें अटक जाते हैं, आज तक अनादि काल से हम व्रत पूजा भक्ति इनमें ही अटके रहे, खूब किया हमने आज तक अनादि काल से, ऐसा नहीं कभी नहीं किया, सुबह मैंने दो लाइन बोली थी गाथा की, लोकसार की गाथा सुनाई थी तुम्हें, निज आत्मा जाने नहीं यार पुण्य ही करता रहे, सब किया ना नहीं किया क्या बताओ मेरे को, ऐसे नौवे ग्रेड तक कैसे चला गया होगा, कैसे गया होगा, मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रेड उपजायो, आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, बोलो लेश मात्र में सुख प्राप्त नहीं किया, लेश मात्र में सुख नहीं मिला, मुनिव्रत अंगीकार कर लिया, अभी तो किया ही क्या है, मुनिव्रत अंगीकार किया कितनी बार, अनंत बार, अनंत हजार करोड़ लाख अरब खरब दस नहीं, संख्यात असंख्यात नहीं, अनंत बार ग्रेवे कुछ जायो, लेकिन हुआ क्या, निज आत्म ज्ञान लेना, निजमा निज बुद्धि नहीं हुई महेंद्र भाई, ये काम नहीं हुआ, सब कुछ किया तो उपवास कम किए क्या हमने? सुनो, सच झूठे उपवास तो अनंत बार किए, उसकी तो बात ही नहीं है। सच्चे उपवास से भी निर्जरा हो जाए और मुक्ति हो जाए ऐसा है नहीं शास्त्रों में, कितना भी कर लो आप। ऋषभ देव स्वामी के उपवास को तो सच्चा उपवास कहोगे क्या? कितने समय का उपवास किया उन्होंने? अभी अभी फर्स्ट फर्स्ट पालने के पहले, अक्षय तृतीया के पहले, दीक्षा लेने के बाद 6 महीने का तो उपवास था पूरा पूरा। बाद में तो आप कह दोगे कि फिर तो भोजन नहीं मिला क्या? 13 महीने 9 दिन का उपवास था, 13 महीने साल भर का उपवास। बाहुबली ने कितने समय उपवास किया? 1 साल, 12 महीने। और भरत जी ने कितने उपवास किए थे दीक्षा लेने के बाद? किए ही नहीं, किए ही नहीं, दीक्षा तो ली थी दीक्षा ली उन्होंने, सुनो दीक्षा ली, मुनिव्रत अंगीकार किया और ध्यान और साधना में बैठे। एक लोच आदि करने के बाद जब साधना में बैठे, कितना उपवास, 28 मूल गुणों का पालन, मुनिव्रत का पालन, अरे कहाँ चांस पड़ा, सब हो गया। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, भगवान बन गए विद इन 48 मिनट, मैक्सिमम है 10-5 मिनट में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्यों? बिना उपवास के, बिना व्रत के, एक करने योग्य काम कर लिया। क्या महेंद्र भाई, करने योग्य काम कर लिया तो सब हो गया, और करने योग्य काम नहीं किया तो फिर कितना भी करते रहो फिर तो सब सहकारी कारण है। एग्जाम की तैयारी किसे कहते हैं? वही बात है, कैसे कैसे तैयारी, बताया मैंने पहले कई बार आपको पीछे पिछले वर्षों में। बोलो बेटे, बच्चे से पूछा, बेटे एग्जाम की तैयारी हो गई? हाँ पापा पूरी तैयारी है। क्या क्या तैयारी कर ली? कि पापा बॉक्स जमा लिया, पेंसिल सील करके रख ली, पेन बराबर चेक कर लिए चल रहे हैं या नहीं, और वो उसमें स्केल है या नहीं है, प्रकार है या नहीं है, और बराबर जूते पॉलिश करके रख लिए, कपड़े धुल गए, प्रेस होकर के आ गए, सब पूरी तैयारी है। बोलो पूरी तैयारी है? क्यों, ये तैयारी नहीं है क्या? एग्जाम की तैयारी नहीं है क्या? कि पढ़ाई कितने की, इन्हें बस वो ही रह गई, इतना सा रह गया। बोले कितने नंबर आएंगे एग्जाम देगा तो, कितने नंबर आएंगे, कितनी सी कमी थी, इतनी सी कमी थी यार, बाकी तो सारी तैयारी की थी ना, इतनी सब तैयारी करी महेंद्र भाई, कोई नंबर नहीं दे रहे हो आप, कुछ तो नंबर दो, इतनी मेहनत तो की है आखिर मैंने, 3 उपवास किए, 30 उपवास किए, इतने समय से व्रत अंगीकार कर रहा हूँ मैं, कुछ तो दो, इतने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की है, ऐसे ही नहीं भाई साहब, हमने शिखर जी की वंदना बहुत बार की है, 18 बार तो मेरी की हुई है महेंद्र भाई, शिखर जी की वंदना बहुत बार, इतनी बार कर ली, और अभी फिर जा रहे हैं हम तो, अक्टूबर में फिर जाएंगे, एक बार तो कम से कम होगी ही, 19वीं बार हो जाएगी। कितनी बार बोलो, कितनी निर्जरा कितनी हुई होगी कितनी बार शिखर जी की वंदना करने से? अरे यदि पहाड़ पर चढ़ करके आने से निर्जरा होती हो तो डोली वाले तो रोज चढ़ते हैं क्या? रोज चढ़ते हैं, वो भी माथा टेकते हैं, टेक करके आते हैं, वो भी श्रद्धा रखते हैं क्या? और तुम जितना वजन उठा करके जाते हो उससे 50 गुना ज्यादा वजन ले जाते हैं, 100 गुना ज्यादा वजन ले जाते हैं, बोलो कितनी निर्जरा होती होगी? ये सब भिखारी भाव है, इन सबको भिखार कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में, इनको बेड़ियां कहकर के पुकारा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में, एक को लोहे की बेड़ी और एक को सोने की बेड़ी कहकर के पुकारा गया है, बंधन दोनों है, मुक्ति दोनों में नहीं है, मुक्ति दोनों में नहीं है। बहुत चर्चा हो सकती है, महेंद्र भाई यही रुक जाता हूँ मैं इसी पॉइंट पर, आगे नहीं बढ़ता हूँ मैं, करेंगे ना अभी अपने पास में, छह सात पीरियड जितना साढ़े सात घंटे हैं अभी अपने पास में चर्चा करने के लिए, और अभी चर्चा करेंगे धीरे धीरे ठीक शुभ और अशुभ परिणामों का क्या चक्कर है। ये पॉइंट जो है ये लोगों को जचता नहीं है, ये पीड़ा देता है बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ा यहाँ रुकने का मन है। ये जो वाक्य लिख दिया गया है ये वाक्य पचता नहीं है, ये वाक्य ऐसे लगता है जैसे हमारे जीवन भर के करे कराए पर आपने पानी फेर दिया हो। हमने इतना किया जिंदगी भर, पानी फेर दिया इसके ऊपर आपने सब कुछ। हम कौन पानी फेरने वाले, क्या तुम ही पानी फेरते रहे आज तक? तुमने सत्य समझा नहीं इसलिए ऐसा हुआ, सत्य बात को जाना नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आगमों में भरी पड़ी है ये बातें। आप आगम खोल करके देखो तो पता लगे आपको। आप आगमों को खोलते नहीं हो, आप शास्त्रों को पढ़ते नहीं हो, आपने जिनागम को पढ़ा नहीं है, आपने शास्त्रों को खोला नहीं है, आपने विद्वानों को इस गहराई में प्रवचन करते हुए सुना नहीं है। हम क्या करें बोलो? आपने गुरु के सानिध्य में रह करके रंग के मात्र भी अभ्यास करना और किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास किया नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। आपको कितने बतलाया कि पुण्य अच्छा है, मन से मानने लग गए अपनी देर होशियारी से, अपनी देर अकल से, सब पुण्य तो करना ही चाहिए, पुण्य तो करना ही चाहिए सब। कई ऐसे समझदार लोग मिल जाते हैं मुकुल भाई, जैसे अटलांटा में मिल गए थे क्या? वो ऐसे समझदार लोग होते हैं, वो ये कहते हैं भाई साहब देखो मोक्ष तो जब मिलेगा अभी जो करने से अपने को स्वर्ग मिल जाए तो वही अच्छा है क्या? स्वर्ग तो चल चले, स्वर्ग में क्या बुराई है भाई साहब? बुराई क्या है ये हम आपको क्या बताएं? उस स्वर्ग के बाद की आपको दशा का पता नहीं है क्या? आपको स्वर्ग दिख रहा है और हमें उस स्वर्ग के बाद में डंडे पड़ते हुए दिख रहे हैं। बोलो कैसे क्या स्थावर्तन धरे यूं परिवर्तन पूरे करे। दूसरे स्वर्ग तक की मर्यादा है, भवनत्रिक भवनवासी यंत्र ज्योतिष, पहला स्वर्ग वैमानिकों का और दूसरा स्वर्ग, यहाँ तक के जीव परसेंटेज नहीं लगता उसमें। अनंत जीव उनमें से बहुत बहुभाग, अनंत नहीं असंख्यात, अनंत ही नहीं असंख्यात जीव उनमें से बहुभाग एक इंद्रिय में जाता है। एक गिने चुने लोग होते हैं जो मर करके पंचेंद्रिय हो जाते हैं, मनुष्य हो जाते हैं, उंगलियों के गिनो इतने से लोग हैं, बाकी असंख्यात जीव वही एक इंद्रिय एक इंद्रिय एक इंद्रिय एक इंद्रिय एक इंद्रिय। तो आपको क्या लगता है ये आपके जो प्लेनेट में जितनी ग्रीनरी दिखाई देती है ये सब देवगति रिटर्न है? कहां से आए हैं ये सब? हाँ भोग पुण्य फल हो एक इंद्रिय विचार नहीं करता है, नहीं किया विचार। ये पुण्य फल को भोग करके दोबारा आएगा कहाँ ये बता? ये पाप और पुण्य सुनो, ये सगे भाई हैं, ये जुड़वा भाइयों की जैसे हैं, एक दूसरे को छोड़ करके नहीं रहते भाई, एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहते ये कि नहीं नहीं भाव हमारे में खूब पुण्य का हो जाए, चिंता मत कर अभी आने वाला है दूसरा। अरे भाव कैसा पाप कर्म का हो जाए रोता तो चिंता मत कर दूसरा आने वाला है। पाप के बाद में पुण्य और पुण्य के बाद में दोनों आते ही आते हैं, नियम से आते हैं। यदि शुद्ध में नहीं गया तू, यदि तेरा उपयोग आत्मा में नहीं गया तू, यदि तूने दृष्टि स्वभाव की नहीं की तो पुण्य के बाद में पाप और पाप के बाद में पुण्य बदलते रहेंगे, नियम से बदलते रहेंगे। ये उसी की तरह है जैसे हमारे दो पैर चर्चा कर रहे हैं, खड़े हैं तो साथ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब चलेंगे तो कभी राइट आगे होता है कभी लेफ्ट आगे होता है। क्यों कभी दोनों साथ साथ में चलते हैं मुकुंद भाई? कभी तो साथ साथ में चलते हो, दोनों पैर साथ साथ में चलाओ तो सही, नहीं होता है ऐसा। माने कभी पुण्य चलता है कभी पाप आगे आ जाता है, कभी पाप आगे आया है तो फिर कभी पुण्य आगे आ जाता है। इसलिए जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष होते हैं वे पुण्य और पाप के फल का विचार करते हैं और वे चिंतन करते हैं, इनमें अटकना नहीं है। ये पुण्य के उदय पर रीझते नहीं है, पाप के उदय में सीझते नहीं है, ये तो सदा ज्ञान स्वभाव में रीझते हैं, स्वभाव में रीझते हैं। ये पुण्य और पाप दोनों बहुत खतरनाक है, दोनों खतरनाक है। समझ लो पुण्य आ गया इसका मतलब डर डर लगना चाहिए, इसका मतलब पाप आने वाला है, लगता है डर। पुण्य के उदय से डरो, मैं ये कह रहा हूँ। ये व्यक्ति पाप के उदय से डरता है, मैं कह रहा हूँ पुण्य के उदय से डरो। पुण्य के उदय में घबराहट होनी चाहिए आपको, क्यों? आपको इस बात की घबराहट होनी चाहिए कि ये पुण्य का उदय पता नहीं कब खत्म हो जाए, वो दूसरा आ जाएगा, कब आ धमकेगा सामने। अभी टेस्ट कराए और डॉक्टर ने कह दिया बस आपके तो ये चलो छुट्टी, आ जाओ लाइन में, बीमारों की लाइन में आ जाओ, क्या करो बोलो। ठीक क्षण मात्र में तू तो सोचता है कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, मजे में हूँ मैं तो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, आचार्य देव 79 नंबर गाथा 79 कवचन सार महान ग्रंथ उसकी टीका में कहते हैं, सुन इस पुण्य के उदय वाले के पुण्य परिणाम में अटके हुए व्यक्ति के हमारे को महान दुख संकट निकट दिखाई दे रहा है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ भाई क्या कह दिया, हमें ये दिखाई दे रहा है। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, कुंद कुंडाचार्य की गाथा का स्पष्टीकरण करते हुए अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, हमें ये जिस व्यक्ति के जीवन में पुण्य का उदय ज्यादा आ रहा है ना, इस व्यक्ति के जीवन में हमारे को थोड़े टाइम बाद में महान दुख का पहाड़ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा, सबके साथ ही बुरा होगा क्या, आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि तुम पुण्य के उदय को क्या समझते हो, कब तक रहेगा ये, साथ में चलेगा। इसलिए समझ लेना इनकी समानता के बारे में कहता हूँ, पुण्य की चाह माने पाप बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा। आप पुण्य को चाहा ना आपने, भाई देखो आपने पुण्य को चाहा है तो पाप मुफ्त में साथ में आएगा। मैं तो अभी करणानुयोग की चर्चा नहीं चल रही है अपनी यहाँ, नहीं तो इस पॉइंट के ऊपर इतने तर्क दे सकता हूँ मैं आपको कि आपको लगता है कि हम पुण्य बांध रहे हैं, मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि आप पाप बांध रहे हैं। क्या महेंद्र भाई, हर पुण्य परिणाम के काल में आप पाप बांध रहे हैं, मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, पुण्य तो पुण्य ही है, पाप पाप ही है। फिर यदि दो नहीं होते तो फिर दो नाम क्यों दिए शास्त्रों में, दो है ना, ही पाप के फल में नरक है और पुण्य के फल में स्वर्ग है। भाई नरक और क्रियंश ये पाप के फल में मिलती है, मनुष्य और देव ये पुण्य के फल में मिलती है। और पुण्य और पाप का अंतर दिखाएंगे पंडित जी आपको, पुण्य और पाप में बहुत अंतर है कि तुम जितने बतलाओगे उससे 100 गुना ज्यादा हम लिख सकते हैं। पुण्य के उदय में बहुत अनुकूलताएं मिलती है, पाप के उदय में प्रतिकूलताएं होती है। पुण्य के उदय में तुम्हारी चलती है, पाप के उदय में चलती नहीं है। पुण्य के उदय में सब तुम्हारा कहना मानते हैं, पाप के उदय में पलट करके सामने जवाब दे देते हैं। बोलो, पुण्य के उदय में तबीयत ठीक रहती है, पाप के उदय में तबीयत बिगड़ जाती है। पुण्य के उदय में बिजनेस चलता है, पाप के उदय में संकट आ जाते हैं, आफत आ जाती है। ये तो बहुत है ना, पुण्य के उदय में यशस्वी कीर्ति दिखाई देती है, पाप के उदय के अंदर अपयश हो जाता है, निंदा और आलोचना होने लग जाती है। पुण्य के उदय में सब तुम्हें पूछ रहे हैं, पाप के उदय में सब तुम्हें दुस्कार रहे हैं। पुण्य के उदय में सुंदर दिखाई दे रहा है, पाप के उदय के अंदर बदसूरत हो जाता है, शरीर बिगड़ जाता है, चेहरा बिगड़ जाता है। ठीक है, बहुत है, हजारों बातें हैं। हिसाब आपने जितने अंतर बतलाए उससे तो ये लगता है हमारे गुरु पुण्य ही पसंद है। क्यों, किसको नहीं चाहिए, अच्छा शरीर हो, सुंदर शरीर हो, सुंदर आवाज हो, प्रशंसा हो, मान सम्मान हो, तो किसको नहीं चाहिए, अच्छा बिजनेस हो, सब लोग हमारी सुनते हो, हमारी आज्ञा चलती हो, ये किसको नहीं चाहिए। लेकिन भाई हमने कहा ना किसके साथ में आएगा पीछे वाला, इसका मतलब यदि आज तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा है तो ये पुण्य का उदय परमानेंट नहीं रहता है। शाश्वत पुण्य के उदय वाले जीव इस धरातल पर कोई नहीं होते, बड़े से बड़े लोग, बोलो नरेंद्र मोदी, सब जगह चलती है ना, क्यों सीट से उतरेगा नहीं क्या? कभी उतरेगा? क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा लगता तो नहीं है। उतरेगा तब तक रहेगा, क्रम से उतरेगा ना, ये तो उतरता ही दिख रहा है। कोई कोई एक ऐसा लेवल बतलाओ पुण्य का, कोई ऐसा पुण्यशाली जीव बतलाओ जिसके जीवन में कोई पाप का उदय नहीं आया हो, बोलो, या जिसके जो शुद्ध में नहीं गया, समझ लेना, तो फिर तो उसकी दशा ही बदल गई है। उसकी नहीं कह रहा हूँ, अरे तुम कौन से राजा महाराजाओं की बात कर रहे हो, चक्रवर्ती सम्राट क्या? अभी चर्चा की निगत दिनों में मैंने सूरत वाले प्रवचनों के अंदर कई बार, चक्रवर्ती जैसा सम्राट, भरत चक्रवर्ती जैसा, उससे ज्यादा तो नहीं चलती है अपनी 32,000 रानी, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, रानियां तो 96,000 है, 32,000 राजा हैं। एक एक राजा सोच नहीं सकते कितना बड़ा सम्राट है, 32,000 राजा जिसके अधीन रहते हो वो चक्रवर्ती सम्राट। छह खंड की विभूति की चर्चा करो तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए और आंखें खुली की खुली रह जाए। सुन लो वैभव, इतनी संपदा उसके पास में, ऐसा लगे हमारे को इतना बड़ा सम्राट भी, और ये छह खंड जीत करके आया ना महेंद्र भाई, चारों तरफ जाकर के आया और लगा उसको जी ओ छह खंड जीत लिया मैंने, तो क्या हुआ प्रवेश भाई? चक्र रत्न अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ यार, छह करो थोड़ा सा, छह करो वापस करो, कौन रह गया, प्रवेश क्यों नहीं करता है? सोचो जरा, कल्पना करो क्या बीती होगी भरत जी के ऊपर उस क्षण, क्या बीती होगी कि यार मैं तो पूरी दिग्विजय करके आया हूँ, पूरे छह खंड में जाकर के आया हूँ, पांचों मलेच्छ खंड विद्यार्थ पर्वत विद्यार्थ की श्रेणियां चारों तरफ चक्कर लगा करके आया हूँ, सब तरफ राउंड लगा करके आ गए, कौन ऐसा रह गया? चेक करो 32,000 राजाओं में से, घबराहट हो गई एकदम, कौन ऐसा है? जांच की, मालूम चला ओ बाहुबली, अरे आपका छोटा भाई बाहुबली है, अरे बाहुबली कई बात नहीं, ये तो हो गया हो गया, चिपट गया, संदेश भेज दो उसके पास में, सूचना भेज दो, सही रहा होगा। आपको क्या लगता है, पलट के जवाब आ गया सामने क्या? तो सुनो, हम भी उसी बाप के बेटे हैं जिसके तुम हो, क्या तुम समझते क्या हो? पिताजी बराबर बंटवारा करके गए थे, अब तुम्हें क्या अधिकार है मेरी संपत्ति को लेने का? बोलो बोलो महेंद्र भाई, मुकुंद भाई, हो सकता है ऐसा? पिताजी बराबर बंटवारा करके गए और बड़े भाई साहब पिताजी के चले जाने के बाद ये कहे कि सुनो भाई, पिताजी तो बंटवारा करके गए थे लेकिन तुम लोग अपनी अपनी संपत्ति और सब मेरे अधीन कर लो, समस्या क्या है? हम छोटे हैं लेकिन कोई बात नहीं, और ज्यादा ही बात है तो आजा मैदान में। चक्रवर्ती सम्राट को बोलो ये सुनना पड़ गया, छह खंड की विभूति का स्वामी हम आप लोग हैं कौन? झटका दे दिया आखिर उसको भी, भरत चक्रवर्ती को भी, और तो और छह खंड में जिसकी चलती थी, छह खंड में जिसकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला कोई नहीं था, सुनना, बाहुबली दीक्षा लेकर के चले गए, युद्ध हो गए उनमें आपस में जो भी हुआ, अब तो छह खंड में हमारी चल रही है कि छह खंड में कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा लेकिन उनका बेटा उनकी आज्ञा में नहीं चला, मारी की, बोलो चलाओ अब दुनिया में कहां कहां चलाओगे? ये है स्वरूप इस पुण्य का, बोलो वैराग्य आना चाहिए इस पुण्य को देख करके, ये पुण्य चलता नहीं है, ये पुण्य टिकता नहीं है, ऊपर से नीचे उतारता ही है, उतरता ही है, व्यक्ति कैसे भला कहे? मैं तो ये कह रहा था, ये प्रूव कर सकता हूं मैं आपके सामने कि ये जो पुण्य है, ये पुण्य देखो बहुत निर्मल भावों से पुण्य बंधा, पुण्य बांधने के परिणाम से तो पाप बनता है क्या? ये तो समझ लेना आप, पुण्य जो बांधना चाहता है उसके पुण्य भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता, लोएस्ट क्वालिटी का बनेगा, पाप भी बन जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत निर्मल परिणाम थे, बहुत विशुद्ध भावों से हमने पूजन करी, बहुत इतनी परिणामों में भद्रता थी, निर्मलता थी, शांति थी, क्रंच मात्र भी कचाई का भाव नहीं आया, किसी के प्रति लड़ाई झगड़े का भाव नहीं आया, किसी के प्रति नाराजगी का भाव नहीं आया। ये ऐसे परिणामों में जो पुण्य बनता है उसके साथ में भी पाप नियम से बनता है। कैसा कैसे कैसा कैसे होता है बता दूं? समय कैसे बोलो, आप कहो तो बताऊं, बता दूं? कर्म कितने? अभी तीन पढ़ाया था, उसको तो सपाट कर दिया आपने, अभी तो तीन ही पढ़ाए थे मैंने तीन ही पढ़ाए थे, कोई बात नहीं, आठ याद है हमारे गुप्रा में कुछ लोगों को। वो जो आठ हैं, वो आठ कर्म कब बनते हैं साहब, ये तो बता दो मेरे को, वो आठ कब बनते हैं गिरीश भाई? आठ में से आयु कर्म लाइफ में एक ही बार बनता है समझ लो, बाकी सात कब बनते हैं? 24/7 रियली 24/7 बनते रहते हार्दिक भाई? हरीश्वर 24/7 बनते रहते हर समय बनते रहते 24/7? अच्छा अब मेरे को ये बात बता दो, अब मुझे ये बात बता दो कि जब आप पूजन कर रहे हो तब भी 24/7, जब आप उपवास कर रहे हो तब भी, जब व्रत कर रहे हो तब भी, अच्छा अभी प्रवचन सुन रहे हो तब भी 24/7 चलते रहते हैं, तो पुण्य ही तो होगा ना कि सुनो ये जो सात है ना, इन सात में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, शास्त्री कह रहे हैं इसकी सारी प्रकृतियां सब पाप रूप ही होती है, इनमें पुण्य नहीं होता, ये सब पाप है। कुछ कुछ समझ में आया क्या था? ये पाप है, ज्ञानावरणी कर्म पाप है, दर्शनावरणी कर्म, मोहनी कर्म, अंतराय कर्म, ये चारों घातियां कर्म, इनकी सारी प्रकृतियां, इनके भेद प्रभेद, ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, मोहनी के 28, अंतराय के 5, ये 47 है, ये सब की 47 है, ये क्या एक 47 और क्या रात करते हैं, ये स्वभाव का डायरेक्ट और क्या है, ये 47। लेकिन इनके लिए अमृत चंद्राचार्य ने और 47 लिखे, 47 शक्तियां, 47 नए, 47 शक्तियां आत्मा की। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ये 47 घातिया कर्मों की प्रकृतियां, ये सारी पाप आपके भक्ति पूजन व्रत उपवास और पाप में भी और पुण्य में भी और 24/7 बन रही है। इसका मतलब पाप हर समय बन रहा है, ये कहना है मुझे। आप पाप से बच नहीं पा रहे हो, आप सोच रहे हो थोड़ा सा पुण्य बांध लिया लेकिन आप बच नहीं पा रहे हो पाप से। इसे 5.5 तक था, 6 तक था, 6 तक है ना अपना टाइम, हम तो हाँ 6:30 बजे 7 बजे तक है, ठीक है, आधा घंटा है। क्या समझ में आई आपके? ये आप इससे बच नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी, आप सोचो कि हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, यहाँ बचने का कोई चांस नहीं है कि हम कर्म बंधन से बच जाएं। तो फिर क्या करें साहब, कुछ तो बात बताओ कि क्या बताएं, ये बता रहे हैं ना आपको, ये भाव कर्म है, ये समझ लो आप, शुभ हो चाहे अशुभ हो ये भाव कर्म है। पावन बेदी डाली, पाँव में बेदी डल जाती है इनसे, शुभ और अशुभ दोनों, शुभ और अशुभ कर्मों के फल में ये जीव रति अरति करता है, निज पद को भूल करके शुभ को अच्छा मानता है, अशुभ को बुरा मानता है, ये इसकी भूल है आश्रव तत्व के संदर्भ में। पुण्य को भला मानता है, पाप को बुरा मानता है, ये इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है, सातों तत्वों संबंधी ये भूल पड़ी है, शब्दों में रच लेता है लेकिन भाव वासन नहीं होता है। इसलिए दिल्ली ज्ञानी पुरुष योग सार ग्रंथ की 71 गाथा बतलाता, योग सार की, उसमें क्या कहा, हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है। क्या लिखा? हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। पुण्य भी तो पाप है। विरले ज्ञानी पुरुष होते हैं जो ये कहते हैं भाई साहब इसको पुण्य मत समझो, इसको पुण्य मत समझो, ये पाप है। कि नहीं नहीं अच्छा तो दिख रहा है, अच्छा तो दिख रहा है। कि साहब आपने अभी कहा था एक लोहे की बेड़ी है एक सोने की बेड़ी है, सोने की है ना, गोल्ड की है ना, कौन सी से बंधना है बोलो, किससे बंधना है, किसी से नहीं बंधना है। मैं लाया हूँ दोनों, आपको किससे बांधू बताओ, लोहे की से बांधू या सोने की से बांधू, बोलो गिरीश भाई, है मेरे पास बैग में, आप जिससे कहो उससे बांध सकता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है लोहे और सोने की में, तो लोहे की से बांध दे आपको, ठीक है एक ही बात है, लोहे की से बांधे क्या सोने की से बांधे। कि सुनो मैं तो ये कह रहा था आगे कि जिसको जिन बेड़ियों से बांधेंगे वो उसकी हो जाएगी, देखो मैं लोहे की से बांधे या सोने की से बांधे, आपको लोहे की से बांधेंगे तो वो लोहे की आपकी हो जाएगी, और आपको सोने की से बांधेंगे तो सोने की आपकी हो जाएगी, बोलो क्या चाहिए किससे बांधना है, फिर तो सोने की ठीक है। अब जब फिर तो सोने की ठीक है तो क्या बुराई है, बंधन तो दोनों में ही है। अरे भाई साहब ये जो रस है ना उसके प्रति ये खतरनाक है, ये जो पुण्य की चेट है ना ये खतरनाक है, इसके लिए कहा शुभ और अशुभ सभी तरह के परिणामों को भाव कर्म कहते हैं, और इन भाव कर्म के कारण क्या कहा था पीछे, क्या कहा था, द्रव्य कर्म बनता है, कि भाव कर्म द्रव्य कर्म को बांध देते हैं, और फिर द्रव्य कर्म बनते हैं तो फिर क्या होता है, इन द्रव्य कर्मों के बंधने के बाद में तो फिर जो कर्मों का फल मिलता है उसे कहते हैं तीसरा कर्म, इसका नाम है नौ कर्म, ये भी एक कर्म है नौ कर्म, नौ कर्म, क्या बोला डॉक्टर साहब, नौ कर्म, क्या बोला, नौ कर्म, नौ कर्म, नौ कर्म, सर्वेंट, किसका नौकर, ये समझता है मेरा नौकर है ये। ये सुनो जिसको तुम तनख्वाह देते हो ना, रमेश भाई जिसको तुम तनख्वाह देते हो वो भी तुम्हारा नौकर नहीं है, क्या, क्यों, क्योंकि वो नौकर में है और वो द्रव्य कर्म का नौकर है, वो चलता किसके हिसाब से, ये नौकर है क्या क्या, सब देव गति हो चाहे नरक गति हो चाहे चिरियन की गति हो, कैसे भी संयोग हो चाहे मिल जाए मनुष्य गति, कोई भी हो नरक की परिस्थितियां हो सारी फिर भी नौकर में, चिरियन में गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि बन जाए, मनुष्यों में खेलता कूदता नाचता गाता दिखाई दे, कैसी भी परिस्थितियां हो, घर हो मकान हो गाड़ी हो बंगला हो, देवगति में स्वर्गों में घूमता हो इधर से उधर, आसमान में उड़ता हो देश बदलता हो देवांगनाओं के साथ में रमता हो, ये सब क्या है, नौकर में है, एक प्रकार से कह सकते हैं सभी प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल ये सब संयोग ये नौकर में, अनुकूल और प्रतिकूल ये सब नौकर में, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, नौकर में क्या चीज है, सभी प्रकार के, क्या लिखा, अनुकूल और प्रतिकूल सभी प्रकार के संयोग, इन संयोगों को नौकर्म कहते हैं, और ये नौकर्म किससे मिलते हैं, द्रव्य कर्म से, नौकर्म किससे मिलते हैं, द्रव्य कर्म से, पक्का पक्का है बिल्कुल, पक्की बात बताओ, पक्की बात कह रहे हो, अच्छा आपने नई गाड़ी खरीदी, किसने खरीदी, किसने खरीदी, कैसे मिली गाड़ी, गाड़ी कैसे मिली ये बताओ आप, तो गाड़ी कैसे मिली, हमने खरीदी है साहब, पैसे से खरीदी है, کہ کون سی خریدی ہے آپ نے, جو بھی آپ کو پسند تھی, ارے جو جگہ وہ خرید سکتے ہیں, اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس میں, 40 سال میں ہم نے یہاں خوب کمایا ہے امریکہ میں, کوئی بھی خرید سکتے ہیں, جو چاہو وہ خرید سکتے ہیں. کہ پہلے ایک بات نکی کرو کہ وہ جو گاڑی خریدی ہے وہ دربے کرم ہے, بھاؤ کرم ہے یا نوکر میں ہے, نوکر میں ہے. اور ابھی آپ کو کہا یہ نوکرم دربے کرم کا نوکر ہوتا ہے, یہ نوکرم دربے کرم کا نوکر ہے. اس کا مطلب یہ بات اتنت اسپشٹ ہے کہ جگت کے کسی بھی سہیوگ پر میری نہیں چل رہی ہے, اس پر کنٹرولنگ کسی اور چیز چل رہی ہے. ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا دربے کرم کے ساتھ میں. ایک ویکتی جا رہا تھا روڈ پر, چلتے چلتے ٹھوکر کھا کر کے گر گیا, ٹھوکر کھا کر کے گر گیا, دو دانت ٹوٹ رہے اس کے, دو دانت ٹوٹ رہے. ڈاکٹر کے گیا, رونے لگا, بہت پریشان ہو گیا, ارے یار یہ کیا کیا ہے یار. سنگلی تو جو ایک سمجھدار ودوان تھے جو اس سے اس کو دیکھ رہے تھے, اس کو کہا کہ بھائی تو روتا کیوں ہے, کیوں روؤں گا نہیں تو اور کیا کروں گا, دو دانت ٹوٹ گئے میرے. کہ سن تجھے پتا نہیں ہے کیا کہ یہ دربے کرم کے ساتھ میں اس کا کانٹیکٹ تھا, دربے کرموں نے 32 دیے تھے, یہ تو ان کی مہربانی سمجھ کے دو ہی واپس لیے ابھی تک. پورے 32 لے سکتے ہیں. یہ جتنے سنیوگ ہیں نا گریش بھائی, جتنے بھی سنیوگ ہیں ہمارے پاس میں, یہ دربے کرم کے ساتھ میں انوبندھ ہے, اس کا سمبندھ ہے, اس کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. یہ سمپتی اپنی نہیں ہے, یہ ساری کی ساری سمپتی, سارا ویبھو, ساری پرستھتیاں ان سب کے اوپر کنٹرولنگ ہے دربے کرم کی. اور ایگریمنٹ میں پتا ہے کیا لکھا ہوا ہے رکن بھائی, ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سنو بھیا یہ سمپتی تمہاری نہیں ہے. وہ دربے کرم نے جب یہ ساری سمپتی دی نا تو انہوں نے کہا کہ یہ سمپتی تمہاری نہیں ہے, یہ گھر تمہارا نہیں ہے, یہ گاڑی تمہاری نہیں ہے, یہ بنگلہ تمہارا نہیں ہے, یہ سب تمہارے نہیں ہے, یہ سب میں تمہیں دے رہا ہوں. ایگریمنٹ ہوا آپس میں, دے رہا ہوں, اور جب تک تمہارے پاس میں دیے ہوئے ہیں تب تک تمہیں اس کو اپیوگ میں لینے کا ادھیکار ہے, لیکن جب چاہوں تب وداؤٹ اینی پری انفارمیشن آئی کین ٹیک بیک. کوئی انفارمیشن نہیں, کوئی نوٹس نہیں, کوئی سوچنا نہیں. آپ کہہ سکتے یہ کیا ہو گیا اچانک, اچانک کچھ نہیں ہے, پہلے سے ایگریمنٹ تھا. آپ کے سر میں جتنے بال ہیں یہ آپ کی بپوتی نہیں ہے, یہ دربے کرم کہہ رہا ہے کہ یہ میرے دیے ہوئے ہیں, جب چاہوں گا اتنے لیتا رہوں گا بھی. آپ یہ مت سمجھ لینا. ہاں لیکن ان کو سنبھال کے رکھنے کی جواب داری تمہاری ہے, جب بھی آئینے کے سامنے جاؤ تھوڑا سا کنگا ہاتھ میں لے کر کے بنا لینا, لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ میرے ہیں, جب چاہوں گا لے سکتا ہوں. ساری سمپتی مائی صاحب کیا کیا دیا ہے ان دربے کرموں نے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نہیں دیا ان دربے کرموں نے. آپ کہہ رہے ہو کیا کیا دیا ہے, میں کہہ رہا ہوں کیا نہیں دیا, سب کچھ. کیونکہ ان سارے سہیوگوں کو کیا نام دیا ہم نے, نوکر. ہم نے کائی کو نام دیا ہے کہ ہے نوکر. دیکھو غیرت کی بات کہتا ہوں, اس کو ایسا لگتا ہے چلتے تو میرے حساب سے ہی ہے سب, چلتے تو سب میرے حساب سے ہی ہے. مکن بھائی آپ کے حساب سے بھی کوئی چلتا ہے, کیا بات کر رہے ہو, مندر میں کہہ رہے ہو آپ, آپ کے حساب سے کوئی چلتے, کچھ تو چلتے ہوں گے آپ کے حساب سے. ابھی گاڑی وہاں سے جب اسٹیئرنگ آپ نے گھمایا, یہ گاڑی یہاں تک کس کے حساب سے چل کے آئی ہے, اپنے آپ آئیے. یہ گاڑی کون چلا کے لایا ہے, ہاتھ میں گاڑی سے آئے نا, بی ایم ڈبلو سے, کون چلا کے لایا, کون چلا کر کے لائے, हमारे हिसाब से चल रही है, किसके हिसाब से चल रहे हैं? समझते हमारे हिसाब से चल रहे हैं। कितनी चीजें हैं जो दिन भर हमारे हिसाब से चलती हुई दिखाई देती है। सब कुछ तो अपने हिसाब से चल रहा है, दुनिया हमारे हिसाब से चल रही है भाई साहब। दुनिया में कितने काम हमारे हिसाब से हो रहे हैं। अच्छा फोन मिलाओ आप, कौन मिला रहा है? नहीं तो मिलाता हूँ। थाली लगेगी, अभी भोजन का समय हो रहा है, फिर जब यहाँ बाहर चलने के बाद में थाली लगाई जाएगी तो थाली कौन लगा रहा है? फिर उस थाली में से जो भी सामान रखे रहेंगे उसमें से क्या खाना है? बोलो हलवा खाना है कि नमकीन खानी है कि रोटी खानी है कि कौन सी सब्जी के साथ में लगाना है, ये किसका निर्णय करता है? कौन करता है? हम ही तो कर रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। सुनी सुनाई बातें मत करो यार, आज फील करते हो बात बताओ। अभी अभी खाएंगे खाना क्या, फिर सोचना देखें कि कर्म का उदय है कि मैं खा रहा हूँ। यार नहीं ये नहीं चाहिए, ये कौन निर्णय कर रहा है? कर्म ये और चाहिए, ये कौन निर्णय कर रहा है? हम ही तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं सब कुछ, मुझे मालूम है। सब अभी तो सब पढ़ाए हुए हैं ना, यहाँ तो सब नौकर नहीं बोलेंगे। नहीं होता है ना यकीन, क्यों नहीं हो रहा है यकीन? वही तो हम कह रहे हैं, भरोसा नहीं हो रहा है ना हमारे को इस बात पर, क्यों नहीं हो रहा है बताओ? निर्णय करने की बात है भाई साहब, ये हमारे को जो जीवन मिला है मनुष्य जीवन, ये निर्णय करने के लिए मिला है। बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ मैं, ये मनुष्य जीवन, जैन कुल, ये तत्व ज्ञान, ये संयोग जो हमारे को मिले हैं, ये बड़ी मुश्किल से मिले हैं और ये निर्णय करने के लिए मिले हैं। इस बात का निर्णय करो शांत चित्त से कि कर कौन रहा है, क्या वास्तव में द्रव्य कर्मों से नौकर हो रहे हैं, क्या सच में ऐसा ही है? ये सब कर्म के कारण हो रहा है। उन्होंने आप उस चेयर पे क्यों बैठे उस जगह पे? मर्जी नहीं। डॉक्टर साहब आप इस चेयर से इधर वाली चेयर पे क्यों आ गए? मुझे लगा ऐसा, मुझे फील हुआ कि यार यहाँ नहीं, यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है, इधर इस चेयर पे बैठ जाते। कौन बैठ रहा है? हम ही तो बैठ रहे हैं। आप लिख रहे हो साहब, क्या लिख रहे हो आप बताओ? द्रव्य कर्म कर रहा है कि आप कर रहे हो? ये इसका कर्ता कौन है? ये नौकर है, इस नौकर्म को करने वाला कौन है? किधर के कर्म का फल है? समझ में नहीं आ रही है बात। ये चश्मा उतार दिया मैंने, अब मैंने उतारा किधर के कर्म ने उतारा? बोलो जो आप भाव कर रहे हैं ना, जो आप भाव कर रहे हैं, इनका प्रश्न है भाव कर्म क्यों नहीं कह रहे हो आप? भाव उसका कर्ता नहीं है संयोगों का, भावों से तो वो कर्म बनेगा, भाव कर्म से नवीन द्रव्य कर्म बनेंगे। भाव भी हर समय चल रहे हैं, ये बात परम सत्य है, लेकिन कर कौन रहा है? या आपने हाथ ऐसे क्यों लगाया? इसका कर्ता कौन है? आप इतने गोरे क्यों हैं और ये इतने काले क्यों हैं? ऐसा फर्क क्यों है? कुछ न कुछ संबंध है इनके बीच में। हाँ कुछ कुछ न कुछ तो रिलेशन है। आपने ये टी शर्ट क्यों पहनी है और आपने ऐसे कलर की क्यों पहनी है? आप बाइक क्यों पहन करके आए हो? आपके हाथ में ये घड़ी क्यों बंधी हुई है? कितने घड़ी दी? सारी बातों के बारे में लगता है महेंद्र भाई हमारे को ऐसा, यार हम ही तो कर रहे हैं यार। अभी आप लेकर के गए पिताजी को, लेकर के गए हाथ लेकर के गए ना, अब हम ये कहें कि नहीं नहीं सब कर्म कर रहा है। क्या सारा करता करता सब कर्म ही है? सब कुछ कर्म का ही किया जा रहा है? सुनो सच्चाई तो यही है कि नौकर्म है और नौकर्म नौकर है द्रव्य कर्म के, 100% नौकरी करते हैं 100%। आप हमारे जो नौकर हैं, ये हमारा कहना माने तो माने और नहीं माने तो नहीं माने क्या, लेकिन द्रव्य कर्म की नौ कर्म के ऊपर 100% चलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म का उदय बदले और नौ कर्म में परिवर्तन नहीं हो। ये कुर्ता कब तक रहेगा हमारे पास में, बोलो कब तक रहेगा, बताओ जवाब दो। जब तक इस कुर्ते संबंधी कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का उदय चलता रहेगा, तब तक ये कुर्ता हमारे संयोग में रहेगा। ये टी शर्ट कब तक रहेगी आपके पास में? मैं सोच रहा हूँ कि ये कुर्ता पुराना हो गया निकाल दूं, कि तुम सोचते रहो लेकिन तब तक रहेगी जब तक द्रव्य कर्म का उदय रहेगा। नया का नया फट जाएगा और नहीं भी फटेगा तो कहीं चला जाएगा, धोबी के यहाँ से ड्राई क्लीन वाले के यहाँ से बदल जाएगा। मेरा कुर्ता तो चले गया अभी ड्राई क्लीन वाले के से, सही कह रहा हूँ, उसने मना कर दिया मेरे को, यार कहीं चला गया, वो दूसरा कुर्ता दिया, वो मेरे से चार नंबर बड़ा था, मैंने कहा यार ये मेरा नहीं है, मेरे किसी के यहाँ चला गया, ये दे जाओ आप, जिसके यहाँ चला गया होगा उसके यहाँ से आएगा। और चार पांच महीने हो गए आज तक तो आया नहीं, मैंने उससे पूछा, बोले यार आप तो रोज पहनते हो, अब वो रोज तो पहनते नहीं है, तो वो कहना होगा कभी सर्दियां निकल गई पूरी कुर्ता नहीं आया, मैंने किसी के यहाँ जाकर के धर गया होगा, कब तक रहेगा बोलो? जब तक द्रव्य कर्म का उदय रहेगा। यदि इस बात पर भरोसा होना, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म ये तीन समझाए हैं मैंने अभी आपको, इन तीनों के ऊपर भरोसा हो तो बहुत आकुलता बहुत टेंशन मिट जाए, अभिमान मिट जाए, मायाचारी और छल कपट का भाव मिट जाए। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में ये तीनों, क्या मुकुंद भाई? ये बहुत बड़ा छोटा मोटा रोल नहीं है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। श्रद्धा का सवाल है, ये श्रद्धा यदि आपको हो गई तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यद्यपि उनमें भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है, अभी तो मैं बहुत बारीकी में जा सकता हूँ उससे, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ
हाँ
ठीक है, कुछ भी नहीं चलता, यही तो कह रहे हैं हम, यही तो कह रहे हैं हम, यही तो कह रहे हैं, ये बात अंदर से जचती नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार, कुछ तो चलता होगा यार, कहीं ना कहीं तो चलता होगा, ऐसा कैसे हो सकता है?
देखा
जाए ये हम नहीं है ना, ये हम नहीं है, ये हम नहीं है जिस पर हम चलाने की कह रहे हैं। तो जीव पर तो कहाँ चल रही है द्रव्य कर्म की, जीव पर कहाँ चल रही है? हम तो नौकर्म से चला रहे हैं ना, जीव नौकर्म थोड़ी ना है आपका, जीव आपका नौकर है क्या? मैं जीव हूँ भाई साहब, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा जीव ये मेरा नौकर्म नहीं है, और जो नौकर्म है उस पर 100% द्रव्य कर्म की चलती है, उस पर जीव की नहीं चलती। पहले ये नक्की करो कि जो नौकर्म है, ये जो हमने कल परसों पढ़ाया था आपको, छह द्रव्यों में से नौकर्म कौन सा द्रव्य है, ये नक्की करो। उद्गल बराबर 100% कि नहीं? जवाब सही नहीं, कुछ जीव भी है जो हमारे नौकर में, ये जीव नहीं, हमारे नौकर में आपका जीव है, चेतन भी है ना वो नौकर में। भाई साहब बताऊं आपको, एग्जांपल देकर के बतलाता हूँ, बात समझ में आएगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यदि उसको नौकर में नहीं माना जाए, बच्चा हमारा कहना मानता था, आज बच्चे ने पलट करके सवाल जवाब क्यों दिया मुझे, बताओ? तेरे पाप कर्म का उदय है बेटा, क्यों? मेरे उदय से वो ये जो मेरे सबमिशन में है, ये मेरे कर्म के उदय से, ये जो मेरे को पलट करके जवाब दे रहा है, इसमें भी मेरा कर्म का उदय है। ये जो इतने लोग मुझे चाहते हैं, इसमें मेरे कर्म का उदय है। ये जो कुछ लोग मेरे से नाराज हैं, इसमें भी वो नाराज क्यों है, ये मेरा नौकर्म है। जीव भी है, जीव भी है और संयोग पुद्गल भी है, ये दोनों, लेकिन स्वयं का जीव नौकर्म नहीं है क्या? पर जीव तो नौकर्म है, समझ में आ रही है बात? دیکھو کیسی پتنی ملے گی, کیسے بچے ہوں گے. کہ نوکر میں نہیں, استری پتر آدی کو نوکر نہیں کہتے ہیں کیا اپن؟ صحیح ہو گیا نا. استری پتر پریوار کیسے ہوں گے؟ نوکر میں. کس کے نوکر میں بھائی صاحب؟ ہمارے صاحب, ہمارے نوکر میں. پھر بھائی غلط فہمی ہے, تمہارے نوکر میں نہیں ہے, نوکر درو کرم کے. یہ جن کو اپنے نوکرم سمجھتا ہے, یہ جن کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہیں, سچ میں یہ تیرے نہیں ہیں. یہ سچائی ہے. دیکھو ہم کہیں باہر جاتے ہیں نا کبھی کبھی, یہاں کا گاڑی چلانا کبھی ایسا ہوا نہیں, باقی کبھی بمبئی جائیں ادھر ادھر جائیں مان لو, تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی کے یہاں گئے, کسی کے یہاں ٹھہرے, اور جن کے یہاں ٹھہرے تھے بہت بڑا بنگلہ تھا, گاڑیاں تھی, سب کچھ نوکر جا کر تھے, اور انہوں نے کہا پنڈت جی کوئی کام ہو تو بتانا. نہیں کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی میں تو جا رہا ہوں, آفس جا رہا ہوں, شو روم پر جا رہا ہوں, ایک کام کروں گاڑی چھوڑ جاتا ہوں یہیں, گاڑی بھی ہے اور ڈرائیور بھی ہے, باہر کھڑا ہے, آپ جو کہوں گے جیسا کہوں گے تو اس کے انوسار وہ کام کرے گا. ہم بھی فری تھے دن میں, ہم نے سوچا چلو تھوڑا راؤنڈ مار جاتے ہیں, کام تھے. ہم نیچے اترے, ہم نے ڈرائیور سے کہی بھیا وہاں چلنا, ہمارے پاس گاڑی میں بیٹھے ہم لے گیا, جہاں جانا تھا ہمارے کو وہاں جانے کے بعد میں ہم نے کہا بھیا یہاں رکو, گاڑی کو پارک کرو, ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں, تم یہیں رہنا. وہی کھڑا تھا. پھر جب ہم پہنچے اس نے دروازہ کھولا, اندر بیٹھے, ہم نے کہا یہاں چلو. جہاں جہاں دن بھر میں ہمارے کو جانا تھا ہم نے جیسا جیسا کہا بالکل وہ ویسا ہمارے حساب سے چلا. دوسرے دن صبح وہ کھڑا تھا نیچے گاڑی کے ساتھ میں, ہم اترے, ہم نے کہا بھیا چلو, بولے نہیں. ٹھیک کیا ہوا, ٹھیک کیا ہوا؟ میں نے کہا چلو, یہ منع کر رہا ہے, یہ کیا ہو گیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کل جو وہ میرے نردیشن میں چل رہا تھا وہ میرے نردیشن میں چل رہا تھا یا نہیں؟ بولو, پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کرنا, میں جو بات سمجھا رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا. آپ کہہ رہے ہو میرے حساب سے نہیں چل رہا تھا, کیونکہ میں میرے حساب سے تو چل رہا تھا. میں نے کہا روکو, رکیا, میں نے کہا چلو, چلے گیا, میں نے کہا یہیں ٹھہرے رہنا, وہ ٹھہرا رہا, ہم نے کہا یہاں چلو, چلے, ہم نے کہا یہاں پارک کر دو, اس نے پارک کر دی, جہاں کہا وہاں رکا, جیسا جیسا چلایا ہم نے ویسا ویسا چلا. بتلاؤ یہ میرے حساب سے چلتے ہوئے وہ میرے حساب سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ وہ میرے حساب سے چلتے ہوئے کے کال میں بھی میرے حساب سے نہیں چل رہا ہے, اس کے اوپر کنٹرولنگ کسی اور کی ہے, مالک کی ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں صبح سے شام تک, دن بھر کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہر کریا کرتے سمے آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں دیکھو میرے حساب سے ہو رہا ہے, یہ میرے حساب سے ہو گیا, یہ میرے حساب سے ہو گیا, یہ میرے حساب سے ہو گیا, یہ میں نے کیا, یہاں میں نے گاڑی روک دی, یہاں میں نے ایسا کر دیا. کہ کون, ایک اور کوئی ہے جس کی کنٹرولنگ چل رہی ہے, اور جس دن اس کا نردیشن ہو گیا کہ ابھی نہیں, ابھی ہمارے کو چلنا ہے, سیٹ جی نے اس کو کہہ دیا ابھی اپنے کو چلنا ہے. تو جب پنڈت جی نیچے اترے تو کیا جواب ملا؟ کہ ابھی نہیں. ہمیں کھڑا ہوا دیکھ کر, ڈرائیور سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر سیٹ جی آ گئے. ارے پنڈت جی صاحب کیا ہوا, کیا ہوا؟ نہیں کہیں جانا تھا. ڈرائیور لے جاؤ ان کو. اب کیا ہوا, اب کیا ہوا؟ واپس میرے نردیشن میں چلنے لگا. تو سنو, ایسا ہی ہوتا ہے, دن بھر میں کئی بار جھٹکے لگتے ہیں ایسے. جب آپ کو ایسا لگتا ہے ایسا نہیں ہوں, ایسا ہو جانا چاہیے, ایسا نہیں ہوں, ایسا ہو جانا چاہیے, کیا آپ کے حساب سے چلتی رہتی ہے گاڑی, تب تک چلتی رہتی ہے تمہیں لگتا ہے میں چلا رہا ہوں, پھر جھٹکا لگا گاڑی تیرے حساب سے نہیں چلی, تجھے لگا یہ کیا ہوا, کیا کوشش کی, ڈاکٹر کو دکھایا, کچھ کیا, اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ یار یہ کچھ ڈرائیور سے جھگڑ رہا ہے, ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے, کچھ اتل پتل کر رہا ہے, کچھ اپچار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کچھ آئس پیک لگا رہا ہے. تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ ٹھیک ہے, اوکے, یہ گرین سگنل مل گیا, یہ کام ہو گیا. تو اس نے کہا ہوا تو میرے کرنے سے ہی ہے, اب کیا کریں بتاؤ. یہ کتنا بڑا بھرم ہے, ہائے صاحب ہمارے کرنے سے نہیں چل رہا ہے, یہ جگت ہمارے حساب سے نہیں چل رہا, یہ سہیوگ ہمارے حساب سے نہیں چل رہے. ایک دریا دوسرے دریا کا کرتا دھرتا ہو نہیں سکتا, یہ ترکال نیم ہے, یہ وستو سوروپ ہے, یہ جین سدھانت ہے, یہ جناتن کا مرم ہے. ایک دریا دوسرے دریا کا ترکال نہیں ہے. تو یہ جیو اور یہ نو کرم, ہم اس نو کرم کے کرتا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ترکال نہیں ہو سکتے. میں جیو دریا ہوں, یہ نو کرم پدل دکھائی دے رہے ہیں. سوا جیو کی جیو پر تو چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ دو نیارے نیارے دریا ہیں, ایک جیو کی دوسرے جیو پر بھی نہیں چلتی ہے. سمجھو, وچار کرو, یہ منشیہ جیون ہمارے کو ان باتوں کے نرنے کے لیے ملا ہے, گہرائی سے وچار کرنے کے لیے ملا ہے. کر وچار تو پام. کون کرے؟ یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, ایک کام کرو مجھے, آپ کر لینا وچار. ارے جو کرے گا اسے ملے گا. کیا بھاؤ؟ جو کرے گا وچار وہی پائے گا. ایسا نہیں وچار انہوں نے کیا اور مل گیا ان کو, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں کوئی پوپا بھائی کا راج نہیں ہے, ہوا میں نہیں چلتی یہ بات کچھ بھی. کرے کوئی اور بھرے کوئی, کیا اس نے پھل مل گیا اس کو, ایسا نہیں ہے. جو کرے گا وہی بھرے گا, اسی کو ملے گا. جو وچار کرے گا وہ پراپت کرے گا. بڑے بھاگیہ سے ہم کو ملا جن دھرم, بہت بھاگیہ سے مل گیا ہے جین دھرم, جین کل, یہ منشیہ دیہ اور یہ ستسنگ, یہ جنوانی سننے کا اوسر بھاگیشالی ہیں جو مل گیا ہے. میرا ایک پروچن ہے ابھی ابھی دو چار دن پہلے اپلوڈ ہوا, بھاگیشالی کون, سدبھاگیہ کسے کہیں, سورت میں ہوا تھا ابھی پروچن. بھاگیشالی کس کا نام, سدبھاگیہ کس کا نام ہے, اور کون اب آگے ہیں کی چرچا کی, کون گھنٹہ, کون گھنٹے سے ایک گھنٹے کے بیچ میں سننا مہندر بھائی, بہت مزے دار چرچا سمجھ میں آئے گی. کس کا نام بھاگیہ ہے, یہ سمجھتا ہے اتنا پیسہ کما لیا میں کتنا بھاگیشالی ہوں. سن, اسے بھاگیہ کہتے ہیں. یہ ملنا نصیب میں نہیں ہے ان لوگوں کے جن لوگوں کے قدم اس طرف نہیں بڑھتے, نصیب میں نہیں ہے. یہ ان کے نصیب میں ہے جن کو مکتی نکٹ ہے, ان کے نصیب میں ہے, یہ بھاگیشالی ہیں. تو بھائی یہ جنوانی کے سانچے میں رہ کر ہم اپنے بھاگیہ کو سدبھاگیہ میں بدل سکتے ہیں, اور ہم سبھی بھاگیشالی تو ہیں ہی, سدبھاگیشالی ہوں اس بھاونا سے میں ابھی کی بات سے یہیں آرام دیتا ہوں. بھوجن اپرانت اپن پنہ ملیں گے یہاں ایک گھنٹے بعد. Yeah.